Pocket Mantra, Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Mantra. Pocket Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor Lalima Aneja Dang and with me is Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabar ko lekar hazir hain. Hamare sath khabron par charcha ke liye studio mein aamantrit hain varishth aarthik patrakar Sushma Ramchandran. Sushma ji, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
थैंक यू मनोज.
हाँ, ये शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग.
जी थैंक्स मनोज. यस लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस फ्रेंड्स. डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस रजिस्टर मार्जिनल गेन्स. सेंसेक्स क्लोजेस नियरली फ्लैट. निफ्टी एंड्स एट 24,642. Finance Minister Nirmala Sitharaman highlights need for governments and industries to work together to restore global calm. Sanjay Malhotra takes charge as RBI Governor, emphasizes the importance of maintaining stability in dynamic global environment. And crude oil prices rise over 1%. Brent crude trades at $73.06.
Gharelu share bazaar mein utar chadhav ke beech hua suchkank mamuli badhat ke साथ हुए बंद. सेंसेक्स बिना किसी खास बढ़त में रहा. निफ्टी 24,642 दर्ज हुआ. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक शांति बहाल करने के लिए दुनिया भर की सरकारों और उद्योगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया. संजय मल्होत्रा ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार संभाला. दुनिया भर में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, बदलते पर्यावरण के प्रभावों और राजनीतिक अनिश्चितताओं से बचने के लिए स्थिरता बहाल करने के महत्व पर बल दिया. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़े, भाव बढ़कर $73 प्रति बैरल से ऊपर पहुंचे. घरेलू शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ और प्रमुख सूचकांक बिना किसी खास बढ़त के बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ यानी 16 अंकों की बढ़त लेकर 81,526 दर्ज हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 32 अंक यानी 0.13% की बढ़त लेकर 24,642 दर्ज हुआ. विस्तृत बाजार की ओर चलें तो वहां थोड़ी सी लिवाली अपेक्षाकृत अधिक रही. बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.25% लाभ में रहा. स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.35% की वृद्धि हुई.
All right, let's have a look at the stocks in detail now. Benchmark domestic equity indices today ended with marginal gains. The 30-share BSE Sensex settled nearly flat, rising slightly by 16 points to close at 81,526. And the NSE Nifty 50 was up 32 points or 0.13% to end at 24,642. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange ended in positive territory. The mid-cap index added 0.25% and the small-cap index gained 0.35%. In the Sensex index, 17 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, JSW Steel shed 1.3%, Adani Ports fell over 1.2%, and NTPC dropped over 0.8%. Conversely, among the top gainers, Bajaj Finance surged over 2.5%, Nestle climbed over 1.2%, and Bajaj Financial Services advanced 1.2%. In sectoral indices at the BSE, 16 out of 20 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, consumer durables gained over 0.5%, industrials rose 0.4%, and auto added over 0.3%. Conversely, in the top laggards, utilities, Power and Bankex dipped over 0.3%, and services was marginally down by 0.05%. Well, the overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,146 companies advanced and 1,840 declined, while 110 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 103 companies hit their 52-week high, while 13 hit their 52-week low. And rupee.
बिल्कुल रुपए पर हम ध्यान दें तो आज अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया मामूली तौर पर बढ़ा है 84.84 रुपए के स्तर पर आज बंद हुआ रुपया। उधर दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर दिवसीय कारोबार में 106.7 पर चल रहा था।
सो द सुषमा द सेंसेक्स एंड्स ऑलमोस्ट फ्लैट सम सॉलिस साइकोलॉजिकल सॉलिस एट वन टाइम 86,000 नाउ एट लीस्ट इट्स क्रॉस द 80,000 बैरियर एंड एंड्स एट 81,526 बट नॉट मच चेंज नो न्यूज इज गुड न्यूज कैन यू से दैट
वेल आई गेस सो वी हैव ऑफकोर्स इट हैज बक द ट्रेंड फॉर द लास्ट फ्यू सेशंस यू हैड a bearish trend markets were moving downward but the fact is we had had some bad news over the last few days one was on the second quarter growth data which was the lowest in 7 quarters but of course the government and the central bank have been anticipate that the next quarter will be far better one of the reasons given is that the impact of the reduced expenditure capital expenditure due to the elections has had an impact the central bank has also is also expecting higher growth in the third quarter so at the same time the other good news is that foreign institutional investors are actually coming back into the market now you had a situation you know for quite a long time that the FIIs were pulling out
yes
they were moving to a more lucrative markets they were moving in other parts of Asia and of course back to the US so now they are coming back they are showing greater faith in the India story so that's the plus point now today of course there is a the market has been virtually flat but slightly up the fact is there is a certain amount of nervousness the market was waiting for the consumer price index data in this country as well as the inflation data that's going to come out from the US because that's going to influence the US Federal Reserve rate cuts I mean both sets of data are very important because one is going to impact our central bank rate cuts and the other one is going to impact the rate cuts in the US
यहाँ पर सुषमा जी आपने एक बड़ी अच्छी कहने खबर दी है कि FIIs लौट रहे हैं भारतीय बाजार में हालांकि हमारे जो परिणाम आए थे औद्योगिक जगत के आंकड़े वो बहुत अधिक उत्साहजनक नहीं थे लेकिन उनका विश्वास क्या जता रहा कुल मिलाकर भारत की यानी जो सबसे तेज गति से हम अभी भी बढ़ रहे हैं दुनिया भर में वहां पर भारतीय जो शेयर बाजार है पूंजी बाजार है उसमें जो म्यूचुअल फंड है उनमें भागीदारी थोड़ी सी कम होती नजर आ रही है वो क्या दर्शा रहा है और FIIs का लौटना इन दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे
देखिए पहले तो FIIs की बात करें तो ये दर्शा रहा है कि अभी भी हमारा देश वो सबसे तेज गति चलने वाला देश है एज फार एज ग्रोथ इज कंसर्न्ड हालांकि कंजम्पशन का अभी भी थोड़ा सा वीक है वीक डिमांड अभी भी वीक है और हम देख सकते हैं रूरल अर्बन एरियाज में इतना स्पर्ट होना चाहिए था फेस्टिवल सीजन में उतना नहीं हुआ है लेकिन फिर भी डिमांड एंटिसिपेटेड लगता है कि अभी पूरा हार्वेस्ट आ जाए तो उम्मीद है कि ये डिमांड अभी पिकअप होगा तो ये FIIs का अभी ऑब्वियसली वो देख रहे हैं कि इसका लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है हमारे देश में अभी भी सबसे तेज चलने वाला है अभी भी चीन जो पहले सबसे तेज चलने वाली इकोनॉमी थी वो हमसे पीछे जा रही है और वहां कोई भी स्टिमुलस आया और गया लेकिन फिर भी उसका कुछ असर नहीं रहा सो अब अल्टीमेटली सबसे जो मेजर इकोनॉमीज में इंडिया सबसे तेज चल रही है
You mentioned China, and we're talking about FIIs. We have a large number of Fortune 500 companies which have their manufacturing in China. You think that they will divert to India totally or partially, because it's not easy to shift entirely?
Yes.
Which way is the mood going? And also, not, let's not forget that we have Donald Trump as the president-elect, who's as seen as the way he's appointing Indian-based people or Indian of people of Indian origin. It looks like he has a soft corner for the country. Also, let's not forget the two prime ministers have a very good personal chemistry. Which, in this background, which way do you think the investment is going, Linda?
Well, as far as the China Plus One strategy, this is called China Plus One, because companies invested in China want to spread their risk, and they want to have investments in other areas also. So that has been going on for some time, and India is certainly going to get, and has been getting its share of it. I mean, you see Apple. Apple has come to India. I mean, this is part of China Plus One. They have very heavy, huge investments in China, but they are slowly building up their manufacturing facilities here in Karnataka, Telangana, Tamil Nadu. They are setting up their ventures. But if you take, the larger picture, many companies are also going to countries like Indonesia, Vietnam, even Mexico, where it is perceived that the investment climate is easier. I think one of the problems in this country is our policies have changed, but regulatory procedures have not changed so much. Not at the central government. Central government, in fact, if you talk to officials, they will say that, you know, we have done whatever we can. But if you go down to the state level, the municipal level, this is where you have many approvals that have to be taken by companies, and this is where red tape now needs to be taken care of, and this is where companies are finding problems.
यहाँ पर हम एक बार फिर से घर लौटना चाहेंगे और घरेलू शेयर बाजार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, खास तौर से जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी उनके दाम में जो उतार चढ़ाव आते रहे हैं वहाँ पर, वहाँ क्या स्थिति रहने वाली है इस बात को ध्यान रखते हुए कि सरकार ने तय किया है कि घरेलू बाजार में गेहूँ की उपलब्धता सुनिश्चित रहे, उस पर सरकार की नजर बनी हुई है. रिकॉर्ड उत्पादन 2024 में हुआ है खरीफ फसल के दौरान, गेहूं का 1132 लाख मेट्रिक टन का मतलब कह लीजिए उत्पादन हुआ है. और तो यहां पर सरकार की नीतियों और जो खाद्य मुद्रा स्फीति को लेकर संकेत आ रहे हैं वह क्या दर्शा रहे हैं?
ये देखिए, बात यह है कि ये एक तो बहुत सीजनल फैक्टर्स बहुत हैं इसमें. अगर आप देखें, अगर कई सालों की अगर आप इन्फ्लेशन डेटा देखें, तो अगस्त सितंबर में ये सब्जी, फल और सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, और ये हार्वेस्ट से पहले है, जब फ्रेश क्रॉप आता है सितंबर अक्टूबर में, तो अगस्त सितंबर में हमेशा ये दाम बढ़ते हैं. अब ये देखना है कि नवंबर दिसंबर में कैसे है, जबकि ये फ्रेश क्रॉप आ जाए और ये जो इन्फ्लेशन प्राइसेस थोड़ी सी ठंडी, इन्फ्लेशन रेट्स रादर थोड़ी सी ठंडी हो जाए, खासकर फूड इन्फ्लेशन की. तो इसमें सीजनल फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं. कुछ तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हुए हैं, कई जगहों में फ्लड्स हुए हैं, कई जगहों में ड्राउट है, तो ये जो उत्पादन की जो कमी है उस वजह से भी हुआ है कई सिलेक्टेड एरियाज में.
जी, आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज वैश्विक शांति बहाल करने के लिए दुनिया भर की सरकारों और उद्योगों के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया है. नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए दशकीय प्राथमिकताएं विषय पर वैश्विक आर्थिक नीति मंच में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस दशक में वैश्विक प्राथमिकताओं को सामान्य स्थिति बहाल करने पर केंद्रित होना चाहिए. इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने किया था. सुश्री सीतारामन ने कहा कि युद्ध और व्यवधानों से बचना चाहिए, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला बाधित करने के मुख्य कारण है. वित्त मंत्री ने कहा कि मुद्रास्फीति दुनिया भर में प्रमुख चुनौती है और इसका प्राथमिक कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान है. उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी उद्योगों, सरकारों, नीति निर्माताओं और नागरिक मंचों को मिलकर काम करना जरूरी है. यहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. दुनिया भर में हम विभिन्न स्थानों पर कह लें कि लगातार तनाव देख रहे हैं, भू राजनीतिक स्थितियां तेज गति से बदल रही हैं, उसमें कितना प्रासंगिक है इनका आह्वान?
دیکھیے اگر آپ یاد کریں 2022 میں یہ یوکرین کا جو جب یدھ شروع ہوا تھا
جی.
تو اس وقت ہمارے دیش میں جو آرتھک استھتی تھی بہت اچھی تھی کہ لگتا تھا کہ کووڈ کے بعد ایک تو کووڈ کی جو کے بعد حالات ہوئے تھے ہمارے دیش میں نہیں ساری دنیا بھر میں ہر دیشوں میں سب کی جو تکلیفیں تھیں وہ تب ٹھیک ہو رہی تھی لگ رہا تھا کہ یہ ہماری آرتھک استھتی کی جو استھتی بڑھ رہی ہے اور گروتھ کی جو گتی ہے وہ تیز چل رہی ہے لیکن ایک دم سے وہ یوکرین کی جو یدھ ہے اس کی وجہ سے کافی ساری مشکلیں آئی تھی آبسٹیکلز آئی تھی ایک تو جو تیل کے دام تھے بہت بڑھ گئے تھے
اچھا
کچھ چیزیں جو ہم یوکرین سے جیسے لاتے تھے جیسے کہ سن فلاور آئل وہاں سے وہ نہیں مل رہا تھا ہماری جو سپلائی جیسے فرٹیلائزرز کی رشیا سے آتی تھی تو یہ جو دیش اس یدھ میں شامل تھے ان کے ساتھ جو نیتیاں ہماری جو ہم اپناتے رہے ان کے ساتھ ہمارے بائیلیٹرل ریلیشن شپس وہ ڈسرپٹ ہو گئی تھی اور اس سے ہمارے دیش میں بھی سارا انفلیشن بھی آ گیا جو ہر چیز کا دام بڑھ گیا انفلیشنری پریشرز آ گئے سو اس کا تو اثر ہوا ہے اب پچھلے سال پھر یہ ایک اور کانفلکٹ ایریا شروع ہو گیا اسرائیل اور حماس کا جو کانفلکٹ ہوا اس کی وجہ سے حالانکہ اس ایریا میں تیل کی اتپادن نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی تیل کی اتپادن اس آس پاس ہوتی ہے اسی دیشوں میں مڈل ایسٹ ویسٹ ایشیا میں کتنے دیش ہیں جہاں سے ہم آیات کرتے ہیں تیل تو یہ جو ڈسرپشن ہے یہ بالکل صحیح کہا وت منتری نے کہ جب تک شانتی نہیں آ جاتی ہمارے دیش میں گلوبلی نہیں آتی ہے تب تک ہمارے دیش میں بھی اور ہمارے دیش کو چھوڑ کے پورے وشو بھر میں جو آرتھک استھتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی
جی آئیے آگے بڑھیں
جی Well, RBI Governor Sanjay Malhotra today emphasized the importance of maintaining stability in a dynamic global environment marked by geopolitical tensions, climate change impacts and political uncertainties. He said that the RBI will continue to prioritize stability in policy matters, adding that the central bank will remain alert in response to the current global economic and political landscape. The governor mentioned that RBI will continue to collaborate with various stakeholders, including financial regulators and central and state governments to ensure that the benefits of formal financial inclusion reach everyone. He also highlighted the transformative role of technology in the financial sector. Earlier in the day, Sanjay Malhotra took charge as the 26th governor of the Reserve Bank of India, succeeding Shaktikanta Das, who completed his 6-year term. So, looking back at Shaktikanta Das, to recall Sushma, he has had, I think he has... He has had the second longest stint as RBI governor. The only person who has had a longer term in office is Benigal Rama Rao, who served between July 1949 and January 1957. I collected this data. And now what do you make of the next governor, the 26th governor, Sanjay Malhotra?
Well, it's difficult to say anything just now. He has, of course, been a bureaucrat. So he goes into secretary. Yes. Mm-hmm. And so he goes into a completely new role. Where he is no longer a bureaucrat, owing allegiance to the central government. He's an independent regulator heading the central bank. It's a very, very, very important post. And he has, as you pointed out, I mean, Mr. Shaktikanta Das has had not only a record of, very long tenure, but he's had a very peaceful tenure, actually. The relationship between the finance ministry and the central government has been very harmonious in these last few years. In fact, he mentioned that, I think, in his closing media conference. You have had in the past friction between RBI governors and the central government. And this is not just this government. This is with the UPA government also you had when the finance ministers have had run-ins with the RBI governors because they have looked at the economic situation in a different way. And the RBI governor, of course, as... Shaktikanta Das himself said, they look, they take a wider, you know, perspective of the economy. Mm-hmm. So there have been differences, and this is fine actually. There should be some tension between the RBI governor and the government. There should be some differences because they look at things differently, and finally you come to a compromise, which is how it should be.
When Mr. Das assumed office, NPAs were declining. Now
yes.
that Mr. Sanjay Malhotra takes over, we are in a fairly healthy position. Do you think he has more scope to improve and strengthen the finance system because of the current, because very low NPAs, we are probably at the rock bottom?
Yes, yes. That is very true, that over the last probably a decade, I would say, the banking system has been strengthened tremendously. And we no longer, as you said, we don't have that burden of the NPAs, which we had about 8 or 9 years ago. But he has other challenges to face. And one is, of course, right now, the challenge of whether to deal with inflation or whether to tackle growth. Mm. So he has to decide whether to cut rates or whether to deal with the inflation targeting.
थोड़ा सा तनाव जीवन के लिए बेहतर होता है, अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहतर होता है. और जिस तरह से कोविड काल में हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने में योगदान दिया, उसकी सराहना दुनिया भर में की गई. बहरहाल, नए हमारे गवर्नर का हम स्वागत करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि और भी बेहतर अर्थ कदम इनके कार्यकाल में उठाया जाएगा. आइए आगे बढ़ें. देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कुल स्थापित क्षमता पिछले 10 वर्षों में 76.38 गीगावाट से बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हम कहें, कहां 76 गीगावाट और अब 203 गीगावाट, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, हम स्वीकार सकते हैं इसे?
जी बिल्कुल बिल्कुल. ये जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है, एक तो हमारे इंडिया ने काफी एम्बिशियस टारगेट्स दिए हैं कॉप में. कॉप आगे पहले की जो कॉप मीटिंग्स थे
जी.
और अब पर हमने एम्बिशियस टारगेट्स दिए थे, पर हम उनसे आगे आगे हैं
जी.
क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की जो शेयर है हमारी टोटल एनर्जी में, अभी हमारे जो लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा है वो बताता है कि 40% के करीब आ गया है टोटल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में
जी.
तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और मेरे ख्याल में आगे वाले दिनों से इसका फायदा यही होगा कि कार्बन इमिशंस हमारे देश में काफी कम हो जाएंगे.
राइट, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ जीरो कार्बन कंट्री. लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. ऑलराइट, यूनियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज सेड दैट गवर्नमेंट इज रेडी टू मेक अ लॉ गवर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इफ देयर इज कंसेंसस इन द हाउस. रिप्लाइंग टू सप्लीमेंटरीज इन द लोकसभा टुडे, मिस्टर वैष्णव सेड अ बैलेंस is needed to be struck between freedom of expression and legal framework on AI based on ethics. The minister said a comprehensive India AI mission has been started in the country. He said it has 7 pillars: creating AI compute facility, skill framework, startups financing, creating innovation center, data sets platform and creating new applications.
आइए आगे बढ़ें. संचार मंत्रालय ने 6G के भारत के दृष्टिकोण अनुरूप कार्य योजना विकसित करने के लिए भारत 6G अलायंस का गठन किया है. संचार राज्य मंत्री डॉ पी चंद्रशेखर ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि घरेलू उद्योग, शिक्षा जगत, राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन तथा मानकों से जुड़े संगठनों को इस गठबंधन में शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि भारत की 6G संभावनाओं के बारे में भारत 6G दृष्टिपत्र को हाल ही में प्रधानमंत्री ने जारी किया था, जिसमें भारत को वर्ष 2030 तक डिजाइन और विकास तथा 6G प्रौद्योगिकी के प्रसार में अग्रणी देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है. यहां पर समझना चाहेंगे कि हम बहुत तेज गति से कह लें कि 2G, 3G, 4G, 5G और अब चर्चा हो रही है 6G और वो भी 2030 तक. क्या लग रहा है, यानी कि हम लोग इतनी तेज गति से लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे तकनीक में जो बढ़ोतरी हो रही है उसे ध्यान में रखते हुए?
नहीं, मेरे ख्याल इसकी कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि हम उस लक्ष्य पे पहुंचे कि नहीं. सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में एक जमाने में ये होता था कि डेवलप्ड कंट्रीज के से हम टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में पीछे होते थे, अब तो हम आगे ही जा रहे हैं. जो लोग अमेरिका या यूरोप जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हमारे देश में डिजिटाइजेशन बहुत ज्यादा है, तो टेलीकॉम, ये जो टेलीकॉम क्षेत्र है और आईटी क्षेत्र है, उसमें हमारा देश डिजिटाइजेशन में काफी देशों से बहुत आगे है. और जो आम आदमी है हमारे देश में, आम आदमी ने ये डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसको बड़ी बखूबी अपनाया है.
आइए आगे बढ़ें. काठमांडू में भारतीय दूतावास ने नेपाल पर्यटन बोर्ड के सहयोग से कल पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया. इस दौरान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले वर्ष महाकुंभ को प्रोत्साहन देने पर चर्चा हुई. भारत और नेपाल के बीच पर्यटन सर्किट को लागू करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए B2B संपर्क स्थापित करने पर भी बल हुआ. और अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिलाजुला रुख दिखा है. दक्षिण कोरिया का कोस्पी निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से 1% लाभ में रहा. चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.29% की वृद्धि हुई. जापान का निक्केई 225 सूचकांक वहां बिना किसी खास उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास रहा. बिकवाली के दबाव में हांगकांग के हेंगसेंग में 0.7% की गिरावट हुई. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.5% नुकसान में रहा. यूरोपीय जोन पर ध्यान दें तो वहां प्रमुख बाजारों में तेजी दिख रही थी. समाचार तैयार किए जाने तक लंदन का फुटसी 100 और फ्रांस का कैक 40 0.1% से अधिक ऊपर चल रहा था. जर्मनी का डैक्स भी 0.03% की मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था.
All right, let's take a look at the U.S. markets now. Well, U.S. stocks ended in negative territory yesterday, dragged by technology stocks and ahead of key inflation report that is expected to influence the Federal Reserve's next interest rate decision. The Dow Jones Industrial Average declined 0.35%, the S&P 500 fell 0.3%, and the Nasdaq Composite closed 0.25% lower.
यहाँ पर हम वैश्विक बाजारों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, खास तौर से अमेरिका पर. अमेरिका से क्या खबरें आ रही वहाँ की अर्थव्यवस्था को लेकर, और वहाँ जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो आने वाले दिनों में शासन में आएंगे, उनकी नीतियों को लेकर जो संदेश जा रहा है वह क्या दर्शा रहा है?
देखिए, सबसे पहली बात है, सबसे के जो आशंका है, जो डर है कि ये जो नया राष्ट्रपति आ रहा है वहाँ पर, उसकी जो नीतियां हैं ट्रेड के मामले में, उसके लोग काफी घबराए हुए हैं. हमारे देश में नहीं, सिर्फ दुनिया भर में, यूरोप में भी लोग कह रहे हैं अरे ये टैरिफ वॉर होगी, ट्रेड वॉर होगी. चीन में लोग सोच रहे हैं कि क्या करना है. और हमारे देश में भी हमें ये सोचना पड़ेगा, और लोग सोच ही रहे होंगे सरकार में कि क्या करना है. अगर जो नीतियां वो कह रहे हैं वो अपनाएंगे, उन्होंने कहा है कि हम वो सारे देशों के किसे जो आयात की जो सामान है उसको 10% की ड्यूटी लगाएंगे, और चीन के ऊपर वो 60% की ड्यूटी लगाएंगे. चीन ने अभी जो खबरें आ रही हैं, चीन ये सोच रहा है अरे हम अपनी जो करेंसी है उसका वैल्यू हम डिप्रिसिएट कर देते हैं
जी.
थोड़ा सा हम अपना जी, अपनी कंपेटिटिवनेस. तो उन्होंने ये पहले ही ये नीति पहले भी अपनाई है, और पहले भी काफी झगड़ा हुआ है यूएस के साथ इसके ऊपर. तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, पर करने की वो सोच रहे हैं. तो बाकी देश भी सोच रहे हैं कि वो क्या करेंगे अगर 10% है. लेकिन हमारे देश में हमें ये लगता है कि अगर चीन के ऊपर इतनी वो ड्यूटीज लगेगी, तो हमारी जो सामान है, हमारा जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो थोड़ा कम्पिटिटिव हो जाएगा. तो उसका ये फायदा होना चाहिए.
राइट. ऑयल प्राइसेस रोज ओवर 1% टुडे एज मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंटिसिपेटेड अ राइज इन डिमांड फ्रॉम टॉप इंपोर्टर चाइना फॉलोइंग इट्स लेटेस्ट प्लान्स टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग ओवर 1.2% अप एट $73.06 पर बैरल, एंड WTI क्रूड हैड गेन्ड 1.3% टू ट्रेड एट $69.48 पर बैरल अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स.
चलिए सर्राफा बाजार. सर्राफा बाजार में समाचार तैयार किए जाने तक सोना मजबूत बना हुआ था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 3% बढ़कर 78,480 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 0.46% घटकर 94,960 रुपए प्रति किलो पर थी। एमसीएक्स में सोना फरवरी वाला 0.5% कम था, 78,376 रुपए प्रति किलो पर था। और बस इतने पर ही श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं
थैंक यू सुषमा रामचंद्रन फॉर ज्वाइनिंग अस एट आकाशवाणी स्टूडियो। थैंक यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस रजिस्टर मार्जिनल गेन्स, सेंसेक्स क्लोजेस नियरली फ्लैट, निफ्टी एंड्स एट 24,642। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हाईलाइट्स नीड फॉर गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज टू वर्क टुगेदर टू रिस्टोर ग्लोबल काम। संजय मल्होत्रा टेक्स चार्ज एज आरबीआई गवर्नर, एम्फसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन डायनामिक ग्लोबल एनवायरनमेंट। एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज ओवर 1%, ब्रेंट क्रूड ट्रेड्स एट $73.06। वेल फ्रेंड्स, दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। दिस इज माई सेल्फ लालिमा अनेजा डैंग एंड माई को एंकर मनोज पाठक साइनिंग ऑफ। नमस्कार।